بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ پریہ شروتاؤں، آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ آراف کی 180 سے 183 تک کی آیتوں سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں شری علی اصغر برومند۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، تو تم انہی کے دوارا اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے وشے میں کٹلتا گرہن کرتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا پھل وہ جلد پائیں گے، اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک گٹ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو حق کے ساتھ مارگ دکھاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا हम उन्हें इस प्रकार आहिस्ता आहिस्ता जहन्नम में ले जाएंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा, और मैं उन्हें ढील देता हूँ, निसंदेह मेरी चाल दृढ़ है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा प्रसारण आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज सोमवार है, इसवंत की पहली, रजब की 29 और फरवरी की 20 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा और उसके बाद विश्व दर्पण, और अंत में आप सुनेंगे सेहत का राज। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए, पता है parstoday.ir/hi। अब आप सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान के राष्ट्रपति ने परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के दोहरे रवैये की निंदा की है। युद्ध के भड़कते शोलों के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कीव की यात्रा पर पहुंचे हैं। चीन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका का उंगली उठाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफ्रीकी संघ ने इसराइल को बेआबरू करने के बाद एक बयान जारी किया है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने प्रतिबंधों को हटाने के लिए ईरान की उचित मांगों को स्वीकार किया है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने चीन के CGTN चैनल के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि एक ओर अमेरिका और यूरोप ये दावा करते हैं कि वे परमाणु समझौते के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखें तो इस संबंध में किसी भी तरह की कोई व्यावहारिक कार्रवाई करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। राष्ट्रपति रईसी ने पश्चिम के अमानवीय और क्रूर प्रतिबंधों को ईरानी राष्ट्र के खिलाफ युद्ध माना और कहा कि अमेरिका और यूरोप वार्ता की मेज को छोड़कर ईरान में होने वाले दंगों का समर्थन करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने भी विभिन्न क्षेत्रों में तेहरान और बीजिंग के बीच सहयोग के विकास पर जोर दिया और द्विपक्षीय संबंधों को दीर्घकालिक बताया। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्षों में ईरान और चीन ने 3 माइक्रो स्तरों में अपने संबंधों का विस्तार किया है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा रक्षा और भू राजनीतिक रणनीतिक शामिल है।
ईरान की इस्लामी क्रांति के बाद से ही दुश्मनों ने यह दुष्प्रचार आरंभ कर दिया था कि इस्लामी व्यवस्था को ईरानी जनता का समर्थन हासिल नहीं है, लेकिन 43 वर्षों से लगातार ईरान की जनता रिकॉर्ड तोड़ संख्या में 11 फरवरी को सड़कों पर निकलती है और हर बार दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देती है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी गणराज्य ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रभारी जोसेफ बोरेल से टेलीफोन पर कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है। विदेश मंत्री ने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया कि यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान ईरान और यूरोपीय संघ के बीच संबंध प्रतिबंध हटाने को लेकर समझौता, ईरान और परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच सहयोग और यूक्रेन में संकट पर चर्चा हुई है। इस्लामी गणराज्य ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि ईरान में एक ऐसी इस्लामी व्यवस्था है कि जो ईरानी लोगों के समर्थन पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि 22 बहमन की रैली ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि ईरान की इस्लामी व्यवस्था को ईरानी जनता का पूरा और भरपूर समर्थन प्राप्त है। बता दें कि हालिया महीनों में ईरान में दुश्मनों द्वारा दंगे भड़काने की कोशिश की गई थी ताकि ये दिखा सके कि ईरान की जनता इस्लामी व्यवस्था से खुश नहीं है, लेकिन 11 फरवरी इस्लामिक क्रांति की सफलता की 43वीं वर्षगांठ के मौके पर पूरे ईरान में इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और आज़ादी का जश्न मनाया कि दुश्मनों की आंखें रैलियों में मौजूद लोगों की उपस्थिति को देखकर फटी की फटी रह गईं और उनके सारे सपने हमेशा की तरह एक बार फिर चकनाचूर हो गए।
यूक्रेन पर रूस के हमले की पहली वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं। सोमवार को कीव पहुंचने के बाद बाइडन ने कहा कि यूक्रेन को अमरीका का समर्थन मिलता रहेगा और मेरी ये यात्रा यूक्रेन के लोकतंत्र, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति वाशिंगटन की अटूट प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि करती है। अमरीकी राष्ट्रपति के बयान में आगे कहा गया है कि लगभग एक साल पहले पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करते हुए सोचा था कि यूक्रेन कमजोर है और यूरोप बढ़ा हुआ है। उन्होंने सोचा था कि वो हमें थका देंगे, लेकिन वो बिल्कुल गलत थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बाइडन का स्वागत करते हुए उनकी कीव यात्रा की प्रशंसा की है। जेलेंस्की का कहना था, बाइडन का कीव में स्वागत है, आपकी यात्रा सभी यूक्रेन वासियों के लिए महत्वपूर्ण समर्थन का चिन्ह है। यूक्रेन रूस युद्ध के बहुत ही अहम मोड़ पर अमरीकी राष्ट्रपति की ये यात्रा यूक्रेन के समर्थक देशों को एकजुट रखने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अमरीकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को अधिक हथियार और सहायता पैकेज देने का ऐलान किया है, जिससे आने वाले दिनों में युद्ध के अधिक तीव्र होने की आशंका है।
रूस को गोला बारूद और हथियार देने के अमरीका के दावे को चीन ने सख्ती से खारिज कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस से रिश्तों को लेकर अमरीका का उंगली उठाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन और रूस सहयोगी देश हैं और बीजिंग ने यूक्रेन पर हमले के बावजूद मॉस्को की निंदा नहीं की है, लेकिन चीन ने रूस को हथियार भी नहीं दिए हैं। गौरतलब है कि अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दावा किया था कि यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर चीन रूस को हथियार और गोला बारूद देने पर विचार कर रहा है। एंटनी ब्लिंकन ने CBS न्यूज को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि चीनी कंपनियां पहले से ही यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रही हैं। हालांकि ये मदद ऐसी थी जिससे किसी तरह का विध्वंस या विनाश न हो, लेकिन अब जो नई जानकारी सामने आई है उससे लगता है कि चीन रूस को हथियार और गोला बारूद देने पर विचार कर रहा है। ब्लिंकन ने धमकी दी है कि अगर चीन ऐसा करता है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमरीकी वायुसीमा में चीनी गुब्बारे को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आई है, जिसे अमरीकी राष्ट्रपति ने मार गिराने का आदेश दिया था। गुब्बारे वाली घटना के बाद की जिसे जासूसी गुब्बारा बताया गया था, अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपना चीन का दौरा भी रद्द कर दिया था।
AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नई दिल्ली स्थित आवास पर रविवार देर रात हमला हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने घर पर हमले की जानकारी देते हुए एक ट्वीट में लिखा, मेरे दिल्ली वाले आवास पर फिर हमला हुआ है। 2014 के बाद से ये चौथी बार है जब ऐसा हमला हुआ है। बीती रात जब मैं जयपुर से लौटा तो मेरे सहायकों ने बताया कि कुछ शरारती तत्वों ने पथराव किया था, जिससे खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। दिल्ली पुलिस को फौरन हमलावरों को गिरफ्तार करना चाहिए। ओवैसी का ये आवास नई दिल्ली के पॉश और सुरक्षित माने जाने वाले इलाके अशोक रोड पर स्थित है। ओवैसी ने हाई सिक्योरिटी जोन में इसकी घटनाओं पर आश्चर्य जताते हुए कहा है कि उन्होंने पुलिस में हमले की शिकायत की है। ओवैसी की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस के एडिशनल DCP घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने सबूत इकट्ठा किए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं और कुछ पत्थर जमीन पर पड़े हुए हैं।
पश्चिमी एशिया में मौजूद अवैध आतंकी ज़ायनी शासन फिलिस्तीनियों पर किसी भी तरह के अत्याचार करने से नहीं हिचकिचाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह उसके सिर पर अमेरिका का हाथ होना है। चरमपंथी ज़ायनी मंत्री बेन गोवियर ने पिछले हफ्ते ज़ायनी जेलरों को आदेश दिया था कि जेलों में फिलिस्तीनियों को नहाने के लिए केवल 2 मिनट का समय दिया जाना चाहिए और जेलों में केवल 1 घंटे के लिए पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि पानी बंद करने की योजना न केवल जेलों के लिए बल्कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों के लिए भी लागू किया जा रहा है। चरमपंथी ज़ायनी मंत्री बेन गोवियर ने ज़ायनी पुलिस प्रमुख से भी पूर्वी अधिकृत बैतुल मुकद्दस में फिलिस्तीनी घरों को गिराने की प्रक्रिया को तेज करने का भी आदेश दिया है। पिछले हफ्ते इसी साजिश के तहत 80 फिलिस्तीनी घरों को ध्वस्त कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि पिछले 2 महीनों के दौरान फिलिस्तीनियों पर हर तरह का दबाव बढ़ गया है। अवैध ज़ायनी शान के आंतरिक सुरक्षा मंत्री बेन गोवियर दिन प्रतिदिन फिलिस्तीनियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने का निर्णय ले रहे हैं।
अफ्रीकी संघ के सम्मेलन से इसराइली राजनयिक दल को बाहर निकाले जाने की घटना के वायरल होने के बाद संघ ने कहा है कि इसराइल के पर्यवेक्षक का दर्जा निलंबित कर दिया गया था, जिसकी वजह से उसे सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। शनिवार को इसराइल की राजदूत शारोन बारली को इथियोपिया में आयोजित होने वाले अफ्रीकी संघ के वार्षिक सम्मेलन से बाहर निकाल दिया गया था। सिक्योरिटी द्वारा बारली को असेंबली हॉल से बाहर निकाले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिस पर इसराइल ने कड़ी आपत्ति जताई थी। AU आयोग के प्रमुख मौसा फाकी महमत ने रविवार को इस घटना पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि ज़ायनी शासन के पर्यवेक्षक का दर्जा निलंबित कर दिया गया था, इसी वजह से हमने इसराइली अधिकारियों को सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया था।
ब्राजील में बाढ़ और भूस्खलन में 24 लोगों की मौत हो गई है। बारिश लगातार जारी है, जिसके चलते रेस्क्यू में भी परेशानी हो रही है। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील के दक्षिण पूर्व के तटीय इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ आ गई है। बाढ़ की तबाही के चलते कई जगह भूस्खलन हुआ है, जिसमें कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों अन्य लोग पलायन करके चले गए। ये जानकारी स्थानीय अधिकारियों ने दी है। प्रभावित इलाके में बड़े स्तर पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है, ताकि मरने वालों का आंकड़ा न बढ़े और लोगों को तत्काल प्रभाव से सहायता उपलब्ध करवाई जा सके।
उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। पिछले 48 घंटे में उसने दूसरी बार मिसाइल दागकर दक्षिण कोरिया को चेतावनी देने की कोशिश की है। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं इसराइल के पैरों तले खिसकती जमीन, भारत में कबायली लोगों की प्रदर्शनी और जापान के विदेश मंत्री की चिंता। तो सबसे पहले इसराइल के पैरों तले खिसकती जमीन का विषय। اسرائیل کے خلاف پوری دنیا میں نفرت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ مدھیہ پور میں جہاں اسرائیل کے خلاف نفرت میں تیزی دیکھی جا رہی ہے، وہیں یوروپی دیشوں میں بھی اسرائیل یا زائونی شاسن کے خلاف نفرت میں وردھی دیکھی جا رہی ہے۔ لندن سے آئی آر آئی بی کے سنواددتا مشتبہ قاسم زادے کی رپورٹ، ساتھی روش زیدی کی زبانی۔
لندن میں فلسطین کے مظلوم قیدیوں کی رہائی کے لیے برٹش اور غیر برٹش چھاتروں نے پردرشن کیا۔ اویدھ زیر شاسن کے جنم استھان اور یو سی ایل وشودیالے کے برابر بھاری سنکھیا میں چھاتروں نے پردرشن کر کے یہ دکھا دیا کہ اس دیش کی نئی پیڑھی اتپیڑت فلسطینی جنتا کے ساتھ ہے، نہ کہ اتیاچار اویدھ زیر شاسن کے۔ چھاتروں کا کہنا ہے کہ زیونیوں نے عرب ونش کے ایک سمرتھک کو بھیجا جو ورش 2006 میں زیونی شاسن دوارا دکشن لبنان کے ادھیکرمڑ میں شامل تھا۔ اسے برٹش اچ شکشا ادھیکاریوں نے دیش کے سیکشک سنستان میں زیونی شاسن کے اپرادوں پر پردہ ڈالنے کے لیے تعینات کیا ہے، لیکن آتنکی زیونی شاسن کے اپرادوں کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے چھاتروں نے اسی سیکشک سنستھا کے سامنے ایکترت ہو کر پردرشن کیا۔ زیونی شاسن ورودھی چھاتروں کے پردرشن میں شامل ایک فلسطینی چھاتر نے کہا کہ ہم یہاں آئے ہیں تاکہ آتنکی زیونی شاسن کے سمرتھکوں کو بتا سکے کہ ہم وشودیالیوں کی سیٹوں پر بیٹھ کر زیونی شاسن کے اپرادھوں پر چپی سادھنے نہیں آئے ہیں۔ ہم چھاتروں کا سندیش پوری طرح اسپشٹ اور سرل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اویدھ قبضے ختم ہوں اور ساتھ ہی زیونی شاسن کے اپرادھ سماپت ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے کہ تمام کوششوں اور دھمکیوں کے باوجود زیونی شاسن اور اس کے سمرتھک اس شاسن کی جنم استھلی میں بھی جنمت خاص کر نوجوانوں کو بھی اپنے ساتھ نہیں لا پائے ہیں۔ ایک برٹش چھاترا کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور برٹین کی یونیورسٹیوں کے بیچ کافی مضبوط سمبندھ ہیں، لیکن ہم سبھی وشودیالوں میں زیونی شاسن کے اپرادھوں کے بارے میں بتائیں گے تاکہ برٹش ادھیکاریوں کو یہ پتا چلے کہ برٹین کے لوگ فلسطین کی مظلوم جنتا کے ساتھ ہیں۔ برٹش چکتسک ڈاکٹر یحییٰ کا کہنا ہے کہ اب سمے آ گیا ہے کہ پرستھتیاں فلسطینی راشٹر کے ہت میں بدلیں، کیونکہ زیونی شاسن کب تک جھوٹ کے پیچھے چھپے گا؟ اب وہ سمے نہیں رہا ہے کہ اپنے اپرادھوں کو چھپا لے، اب سب اس کے اصلی چہرے کو پہچان چکے ہیں۔ ایک سول ایکٹیوسٹ مہیلا کا کہنا ہے کہ میں جانتی ہوں کہ والفور گھوشنا کے آدھار پر برٹین نے فلسطین کو اسرائیل کو سونپ دیا اور فلسطین کی زمین زیونیوں کو دے دی۔ امریکی اور برٹش سرکاروں کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس بیچ فلسطینی لوگوں کا سمرتھن کرنے والے سنگٹھنوں کا کہنا ہے کہ برٹین سہیت ان پشچمی دیشوں میں فلسطین کے سمرتھکوں کی سنکھیا جہاں بڑھ رہی ہے، وہیں فلسطین کے مدعے کو لے کر اس کے سمرتھک ہر سال ادھک سے ادھک دھڑ سنکلپت ہوتے جا رہے ہیں۔ لندن سے آئی آر آئی بی کے سنواددتا مشتبہ قاسم زادے کی رپورٹ۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ بھارت کی راجدھانی نئی دلی میں بھارتی قبیلوں کی ایک پردرشنی لگائی گئی۔ اس رنگا رنگ پردرشنی میں قبیلوں کے انیک پرکار کی وستوؤں کی پردرشنی رکھی گئی۔ وسترت رپورٹ کے ساتھ نئی دلی سے ہمارے سنواددتا شمشاد کاظمی۔
بھارت کی راجدھانی دلی میں راشٹریہ آدیواسی مہوتسو کا آیوجن کیا گیا ہے، جس میں بھارت کے وبھن راجیوں کے آدیواسی دستکار اپنی ہست شلپ وستوؤں اور سامگریوں کا پردرشن کر رہے ہیں۔ اس پردرشنی میں لگ بھگ 200 اسٹال لگائے گئے ہیں، جہاں لگ بھگ 1000 آدیواسی دستکار وبھن پرکار کی اپنی ہست شلپ کلاؤں کا پردرشن کر رہے ہیں۔
جہاں ہم نہیں جا سکتے اسٹیٹ میں، اس کا رہن سہن، کھان پین اور کپڑے، کاٹن فیبرک کے بارے میں پتہ چل رہا ہے۔
اس پردرشنی کا آیوجن ہر ورش کیا جاتا ہے، جس کا ادیش بھارت کی آدیواسی سنسکرتی کو جیوت رکھنا اور آدیواسی ہست شلپی کی पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहित करना है।
मेघालय और नागालैंड स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट वाले वो मुझे फैसिनेटेड करते हैं, तो मेरी कोशिश होती है जो जितने भी ट्राइबल हैं इंडिया पे उनके बारे में मुझे पता चले।
इस प्रदर्शनी में हैंडलूम कपड़ों, लद्दाख की पश्मीना शाल और दूसरे ऊनी कपड़ों, हाथ से बनाए गहनों, बांस और सबाई घास से तैयार की गई वस्तुओं, जड़ी बूटियों से बनाई गई दवाओं, चाय और बालों को मजबूती प्रदान करने वाले तेल और हस्तशिल्पी की दूसरी सजावटी वस्तुओं इत्यादि को प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए रखा गया है।
हम आदिवासी लोग हैं ना, हम जंगल से लेते हैं और केरला से भी हम मंगवाते हैं सब जड़ी बूटियाँ। कर्नाटक आदिवासी है, जो पूरा हर्बल है, जो इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
जम्मू कश्मीर के एक दस्तकार ने ऐसी प्रदर्शनी को महत्वपूर्ण बताया।
हम शुक्रिया करते हैं ट्राइबल्स इंडिया का जो हमें मौका देते हैं ये आर्ट यहाँ लाने का, बेचने का, लोगों के साथ ये मतलब डायरेक्ट जो मार्केटिंग है करने का।
सूखे पत्तों और कपड़ों पर बनाई गई चित्रकला जिसका संबंध उड़ीसा की संस्कृति से है, इस प्रदर्शनी में प्रदर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रही है।
क्लॉथ के लिए इसे पटी हाथ से बनाया, इसके स्टोन कलर है, वेजिटेरियन कलर में बनाया, इसको नाम पटचित्र है, उड़ीसा जगन्नाथ संस्कृति के ऐसा पटचित्र है नाम है।
16 फरवरी से आरंभ हुई आदिवासी दस्तकारी की ये प्रदर्शनी 27 फरवरी तक जारी रहेगी। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
और अब रुख करते हैं जापान का।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
जापान के विदेश मंत्री ने चिंता जताई है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद उनका देश इस समय सबसे गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनका देश रूस के विरुद्ध लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में सक्रिय भागीदारी कर रहा है। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी कायम रिजवी।
जापान के विदेश मंत्री कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से उनका देश इस समय सबसे गंभीर सुरक्षा स्थिति का सामना कर रहा है। म्यूनिख सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनका देश रूस के विरुद्ध लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में सक्रिय भागीदारी कर रहा है। उनका ये भी कहना था कि इस बात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि विश्व के किसी भी क्षेत्र में मौजूदा हालात को बदलने के लिए सैन्य अभियान का सहारा लिया जाए। जापान के विदेश मंत्री ने कहा कि उनके देश के निकटवर्ती जल क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां और साथ ही उत्तरी कोरिया के मिसाइल परीक्षण का क्रम जारी है। उन्होंने कहा कि इन बातों ने पूर्वी एशिया में सुरक्षा चिंताओं को बहुत बढ़ा दिया है। हालांकि जापान के विदेश मंत्री योशिमाशा हायाशी ने अपने भाषण में ये नहीं बताया कि क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से अशांत करने में उनके देश का हिस्सा कितना है। हालिया कुछ वर्षों के दौरान क्षेत्र में अशांति उत्पन्न करने में जापान की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जापान की कुछ गतिविधियां क्षेत्र में सुरक्षा अशांति का कारण बनी है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अमरीकी जानकार हेनरी कैसेंजर कहते हैं कि चीन विरोधी अमरीकी नीतियां क्षेत्र को संकटग्रस्त कर सकती हैं। वे कहते हैं कि अमरीका को ये सोचना चाहिए कि चीन और उत्तरी कोरिया को सीमित करना अमरीका और उसके घटकों के हित में नहीं है। ये काम केवल क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को संकटग्रस्त बनाएगा। इसका इलाज यह है कि अमरीका और उसके घटक इस बारे में तार्किक ढंग से काम करें। ये एक वास्तविकता है कि अमेरिका और उसके घटक क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए चीन और उत्तरी कोरिया का भय दिखाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसी बीच जापान ये चाहता है कि वो अवसर का लाभ उठाते हुए क्षेत्र में सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित हो जाए। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि चीन और उत्तरी कोरिया अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के प्रयास करेंगे, जिसका परिणाम वही निकलेगा जिसका उल्लेख जापान के विदेश मंत्री ने म्यूनिक सम्मेलन में किया है। अब अगर जापान वास्तव में क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता का इच्छुक है तो उसको अपनी सैन्य गतिविधियों पर पुनर्विचार करना होगा। क्षेत्र की स्थिति के सैन्य संतुलन का खराब होना किसी के भी पक्ष में नहीं है। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि पूर्वी एशिया सहित विश्व के किसी भी क्षेत्र में शांति की स्थापना क्षेत्र की सभी शक्तियों की सहकारिता से ही संभव है। ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी एक क्षेत्र की कोई शक्ति अपनी मनमानी करती रहे और अन्य खामोशी से उसको देखते रहे। इसलिए जापान सहित क्षेत्र के सब लोगों के लिए यही उचित है कि वे परस्पर सहयोग करें और कोई भी भड़काने वाली कार्रवाई न करें।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
श्रोताओं, प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम विश्व दर्पण।
विश्व दर्पण।
दोस्तों, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम ईरान की 44 वर्षीय प्रगति पर चर्चा करेंगे। अख्तर रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, पिछले दिनों इस्लामी गणतंत्र ईरान के विभिन्न शहरों और कस्बों में इस्लामी क्रांति की सफलता का जश्न मनाया गया। इस संबंध में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए और विशाल रैलियां निकाली गईं, जिनमें करोड़ों की संख्या में ईरानी जनता ने भाग लिया और एक बार फिर अपनी एकता, समृद्धता और राष्ट्रीय चेतना का प्रमाण पेश किया और साथ ही इस बात की भी घोषणा की कि ईरानी जनता अपनी क्रांति और क्रांति की उमंगों और मूल्यों पर प्रतिबद्ध है। पिछले 44 वर्षों के दौरान ईरान ने अनेक क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति की है और 11 फरवरी की रैलियों में ईरानी राष्ट्र ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर ये बता दिया कि वो देश की प्रगति और विकास में कितनी दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के पूर्व सेक्रेटरी सुहेल महमूद ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता की सालगिरह की बधाई देते हुए कहते हैं कि ईरान ने 44 वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में बहुत प्रगति की है।
जैसे आपने खुद नोट किया, 4 दहाइयाँ गुजर गईं और हम इस वक्त इनकलाब की 44वीं सालगिरह की तरफ जा रहे हैं और मैं इस मौके पे अम्बेसडर हुसैनी को और तमाम जो हमारे कोलीग्स ईरान एम्बेसी में हैं और इस्लामाबाद में और कौंसलेट्स में पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे और इनके तवसुत से हमारे बरादराना ईरानी कौम को इस मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यकीनन इस इसना में ईरान ने बेइंतहा तरक्की की है। अगर आप तालीम का शोबा देखें, किस कदर खानगी जो है वो तकरीबन 100% के नज़दीक है। इसी तरह इंडस्ट्री में बहुत तरक्की की गई है, एग्रीकल्चर में की गई है, आर्ट्स में की गई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की की गई है। तो हम समझते हैं कि इसने बहुत मौके पैदा किए हैं ईरानी आवाम को कि उनका जौहर जो है वो खुलकर सामने आए और मुल्क जो है वो लगातार तरक्की करें। इसी मौके पर हमने बहुत अच्छे एक सेमिनार का इनाकात किया जिसमें अम्बेसडर हुसैनी और उनके कोलीग्स ईरान एम्बेसी से उनकी शराकत के साथ और पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं रहीम हयात साहब तेहरान में उनकी शराकत के साथ, और हमने 76 साल जो पाकिस्तान और ईरान के सफारती ताल्लुकात की सालगिरह है उसको भी मनाया और इसमें जो बातें सामने आईं तमाम गुफ्तगू के साथ कि न सिर्फ ये कि दोनों कौमों के दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान लाजवाल ताल्लुकात हैं जो कि تاریخ میں، کلچر میں، زبان میں اور پولیٹیکل ول میں بیسڈ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہوئی کہ ہمیں اپنی اکنامک پارٹنرشپ کو بہت زیادہ مضبوط کرنا ہے، انرجی کوآپریشن کو آپٹیمل لیول پہ لے کے جانا ہے، اور خطے کی صورتحال اور بین الاقوامی معاملات پر اپنی پوزیشنز کو اور کوآرڈینیٹ کرنا ہے تاکہ ہم دونوں ملک مل کے امن، سلامتی اور ترقی کے پرپز پروسیس کو کنٹریبیوٹ کر سکیں.
پچھلے کچھ مہینوں، وشیش کر حالیہ کچھ دنوں کے دوران، امریکی اور پشچمی میڈیا اور سنچار مادھیم نرنتر یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ اسلامی گڑتنتر ایران کی جنتا اور سرکار کے بیچ فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، اور ان فاصلوں کے پریڑام کو وہ انیک استروں پر دکھانے کا پریاس کر رہے تھے. لیکن ایرانی جنتا نے 11 فروری کی وشال ریلیوں میں بھرپور ڈھنگ سے بھاگ لے کر ان کے سارے اندازوں اور انمانوں پر پانی پھیر دیا. پچھلے دنوں اسلامی کرانتی کی سفلتا کی سالگرہ کا جشن منایا گیا جس میں جنتا نے بھرپور طریقے سے بھاگ لیا. لیکن پچھلے کچھ ورشوں کے دوران اسلامی کرانتی کی سفلتا کی سالگرہ کے جو جشن میں جنتا کی بھاگیداری تھی، وہ اس ورش کی بھاگیداری میں کیا انتر ہے؟ وچار سنیے پرسدھ ٹیکہ کار قمر عباس کے.
دیکھیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے یہاں ایران میں. البتہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید حالات کی وجہ سے بھی ایسا ہو، ورنہ عام طور سے مختلف ملکوں میں دنیا کے انقلاب یا آزادی کی جو سالگرہ ہوتی ہے اس میں تقریب، سرکاری تقریب کا انعقاد ہوتا ہے، اور دلچسپی رکھنے والے وہاں پر، جہاں پر پریڈ وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، وہاں جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ٹی وی پر دیکھ لیتے ہیں. لیکن وہاں اس میں شرکت یا شرکت نہ کرنے کو انقلاب یا آزادی سے وفاداری کا معیار نہیں سمجھا جاتا. جیسے میں ہندوستان یا پاکستان کی بات کروں گا، جو پاکستان میں بھی سرکاری تقریب ہوتی ہے، ظاہر بات ہے وہاں پر کتنا مجمع ہوتا ہے جہاں پر تقریب ہو رہی ہوتی ہے ہندوستان میں. لیکن جو لوگ شرکت نہیں کر رہے ہیں تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ وہ انہیں دلچسپی نہیں ہے. لیکن ایران میں ایسا ہی ہے، اور اس کی وجہ یہی پروپگنڈا ہے. چونکہ یہاں کی سلسلے میں یہ ہے کہ کوئی بھی پروگرام یا کوئی بھی اس طرح کا ہوتا ہے تو جو دشمن ہیں، جو اتنے برسوں سے بلکہ اتنے عشروں سے انقلاب کی ناکامی کی آس اور امید لگائے بیٹھے ہیں اور اس کے لیے کوششیں بھی کر رہے ہیں، تو وہ ہر چیز کو ایک طرح سے انقلاب ہی سے جوڑ دیتے ہیں.
وش درپن. انتراشٹری گھٹنا کرموں کی نبض ٹٹول کر وش بھر میں ہونے والے پریورتنوں کی تہ تک جانے والا کارکرم وش درپن. ہر ہفتے سوموار کو
پاکستان کے پرسدھ ٹیکہ کار راشد عہد کا کہنا ہے کہ پچھلے 44 سال کے دوران ایران جہاں کھڑا ہے اور اسلامی کرانتی کا جنتا کے بیچ جو جنادھار ہے وہ ادوتی ہے.
انقلاب کے جو اہداف تھے وہ بہت تیزی سے، بہت مضبوطی سے انقلاب اسلامی نے حاصل کیا ہے، اور اس وقت یعنی اپنے جو انقلاب ایک ظاہر ہے کہ ڈیوائن ویلوز پر، الہی اقدار پر مبنی ایک سیاسی نظام کی تشکیل تھی جس میں گویا کہ عوام کی شمولیت ہے نا، پھر اس کا اسلامی ہونا، اس نظام کا دینی ہونا، اینٹی ریلیجیس نہ ہونا، یعنی مذہب دشمنی کا عنصر اس میں نہ ہونا اس نظام میں، بلکہ عین یعنی کہ مذہبی اقدار اور الہی اقدار اور اسلامی اقدار کی پاسداری کیا جانا، ان سب میں ایران کے انقلاب اسلامی نے 44 سال میں غیر معمولی پیش رفت کی ہے، غیر معمولی، اور بہت ہی یعنی معجزانہ طور پر انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے ہر محاذ پر، سیاسی محاذ پر ہے نا، اور یعنی کہ یہ ایک فلسفہ جو تھا کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہوا جائے، ریزسٹنس دیا جائے، اور کسی بھی لحاظ سے جو ہے ظلم کے آگے سرنگونی اختیار نہیں کیے جائے، یہ جو استکباری طاقتوں کی تسلط پسندی اور ان کی جو ظالمانہ روش ہے نا، انجسٹس انیکوالٹی پر مبنی ان کی جو تمام سازشیں ہیں، امریکہ کی، اسرائیل کی، اور ان کے گویا کہ اتحادیوں کی، الائز کی، ان کی حلیفوں کی، یعنی انقلاب ہر آن یعنی پوائنٹس، بہت ہی پوائنٹس سکور کر رہا ہے، یعنی کہ کامیابی کے پوائنٹس سکور کر رہا ہے، اور دنیا روز بروز معترف ہوتی جا رہی ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں، اس پوری دنیا میں اس انقلاب کا یعنی پیغام پہنچا ہے۔
ٹیکہ کار قمر عباس اس بار کی ریلیوں میں جنتا کی بھرپور بھاگیداری کو اسلامی گڑتنتر ویوستھا کے پکش میں ریفرنڈم مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
چونکہ اسلامی نظام کی سب سے بڑی طاقت یہاں کے عوام ہے، اور اب تک جتنی بھی سازشیں یہاں کے خلاف کی گئی ہیں ایران کے خلاف، اسے عوام نے ہی دراصل اگر آپ دیکھیں تو ناکام بنایا ہے، تو اس لیے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے اس انقلاب کو ناکام بنانے کی راہ میں وہ عوام ہے یہاں کے، تو اسی لیے دشمن جو ہے وہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا یہی کرتے ہیں۔
پاکستان کے پرسدھ ٹیکہ کار راشد عہد کہتے ہیں کہ پچھلے 44 سال کے دوران سارے آرتھک پرتیبندھوں اور رکاوٹوں کے باوجود ایران نے آرتھک شیتر میں زبردست پرگتی کی ہے۔
ایران پر جس قدر سینکشنز لگائے مغرب نے بشمول امریکہ، یعنی ظاہر اس کا کی سربراہی امریکہ کر رہا تھا، اور خود اقوام متحدہ کی طرف سے بھی بہت سارے سینکشن شروع میں لگائے گئے، تو اس کے باوجود بہت ہی سخت سینکشن، کوئی اس کو برداشت اول تو اس انقلاب نے ویتھسٹینڈ کیا ان تمام سینکشن کو، یعنی اس میں کھڑا رہا، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اس آپ اور ہم سبھی واقف ہیں کہ ادھر 4-5 سالوں سے رہبر معظم نے کافی توجہ دی، اور سال کا جو موضوع ہوتا ہے ایران میں اور رہبر معظم جو ہے وہ نوروز کے عنوان سے مشہد میں خطاب کرتا ہوں، اس میں ہر سال کا ایک عنوان جو دیا، تو تقریباً 4-5 سالوں تک لگاتار وہ بہت ہی اکنامک ایشو پر انہوں نے دیا، اور رہبر جب کسی چیز کو یعنی کہ وہ سال کا عنوان طے کرتے ہیں تو اس پر تمام ایرانی عوام، ایرانی انٹیلیجنشیا، ایرانی انٹیلیکچوئلس اور ہر خاص وقت کچھ کام کر کے دینا چاہتا ہے۔
دوستوں کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔
شروتا ہو، یہ پرسارن آپ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا سے سن رہے ہیں۔ انت میں پرستوت ہے صحت کا راز۔
صحت کا راز۔
दोस्तों कार्यक्रम सेहत का राज के कन्नेकड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और गायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज हम लहसुन की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे।
दोस्तों कार्यक्रम में हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसको आप लोग भली भांति जानते होंगे। आपके रसोई घर में ये अवश्य मौजूद रहता है। खाने में आप मसालों का प्रयोग जरूर ही करते होंगे। खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है उनमें से एक लहसुन भी है। इसका वैज्ञानिक नाम है एलियम सैटिविम। लहसुन में बहुत से औषधीय गुण पाए जाते हैं। कहा जाता है कि हजारों वर्षों से लहसुन का प्रयोग मसालों और पारंपरिक दवा के रूप में किया जाता रहा है। मिस्र में अति प्राचीन काल से लहसुन का प्रयोग होता रहा है। चीन में भी इसको अति प्राचीन काल से प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान समय में दुनिया में लहसुन की बहुत सी किस्में पाई जाती हैं।
आंकड़ों से पता चलता है कि सन 2019 में पूरी दुनिया में 30 मिलियन टन लहसुन का उत्पादन किया गया था। रिपोर्टों में बताया गया कि विश्व में सबसे अधिक लहसुन का उत्पादन चीन में होता है। चीन के बाद विश्व में लहसुन पैदा करने में भारत दूसरे नंबर पर आता है। बांग्लादेश को इस श्रेणी में तीसरे नंबर पर रखा गया है। इस प्रकार से चीन, भारत और बांग्लादेश वे देश हैं जो दुनिया में सबसे अधिक लहसुन पैदा करते हैं। चीन ने सन 2019 में विश्व की जरूरत का 71% लहसुन का निर्यात किया था। पिसा हुआ लहसुन या लहसुन का पाउडर का उत्पादन करने में चीन सबसे ऊपर है। एशियन देशों में लहसुन का प्रयोग अन्य स्थानों की तुलना में अधिक किया जाता है। लहसुन की पैदावार और उसके निर्यात में स्पेन, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और संयुक्त राज्य अमेरिका की भी बड़ी भूमिका है।
ईरान में भी बहुत बड़े पैमाने पर लहसुन पैदा होता है। यहाँ के लहसुन की विश्व बाजार में मांग है। ईरान में पैदा होने वाले लहसुन को हर साल बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। ईरान के कई क्षेत्रों में लहसुन की खेती की जाती है। जलवायु की परिस्थितियों के अनुसार लहसुन की कटाई के समय में थोड़ा अंतर होता है। ईरान में सबसे अधिक लहसुन हमादान में पैदा होता है। वहाँ पर प्रतिवर्ष लगभग 54,000 टन लहसुन की पैदावार होती है। इस हिसाब से लहसुन की पैदावार की दृष्टि से हमादान ईरान में शीर्ष पर है। हमादान से लहसुन को रूस, तुर्की, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा कुछ अन्य पड़ोसी देशों को निर्यात किया जाता है।
दोस्तों खाने में जिन मसालों का प्रयोग किया जाता है उनमें लहसुन वो है जिसकी खेती हजारों वर्षों से हो रही है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये मध्य एशिया से संबंधित है। अपने औषधीय गुणों के कारण लहसुन का प्रयोग पूरी दुनिया में होता आया है। इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि प्राचीन मिस्र, यूनान, रोमन, चीन और भारत सहित प्रमुख सभ्यताओं में लहसुन का प्रयोग हुआ करता था। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने सन 1858 में लहसुन के पौधे और उसके फल के गुणों का विस्तार से वर्णन किया था।
लहसुन को बारहमासी शाकाहारी पौधा बताया जाता है, अर्थात ये पूरे साल उपलब्ध रहता है। इसका तना 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। लहसुन को प्याज के परिवार का ही बताया जाता है। कहते हैं कि जब लहसुन पककर तैयार हो जाता है तो इसका भूमिगत भाग सूखने लगता है। ये गोलाकार 5 से 12 जवों में बट जाता है। इसका हर जवा बहुत बारीक से छिलके से घिरा हुआ होता है। इसको प्रयोग करते समय सामान्यतः इसके जवों को अलग अलग कर लिया जाता है।
लहसुन के भीतर संतृप्त वसा, कैलोरी और कुछ सोडियम पाया जाता है। इनके अतिरिक्त इसमें फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम,
جستہ، کیلشیم، تتل لوح جیسے بہت سے لابھدائک کھنیج پائے جاتے ہیں۔ لہسن کے بھیتر آیوڈین، سلفر اور کلورین جیسے کھنیج بھی ہوتے ہیں۔ یو ایس ڈی اے ارتھات نیشنل نیوٹریئنٹ ڈیٹا بیس کے حساب سے چھوٹا سا دکھائی دینے والا لہسن وٹامن بی، بی سکس، فولیٹ، تھائمین، نیاسین، وٹامن سی، فولک ایسڈ اور مینگنیز سے سمرد ہوتا ہے۔ لہسن کے بھیتر ایلیسین نامک ایک سلفر پایا جاتا ہے جو اس میں ایک وشیش پرکار کی گند کا کارن بنتا ہے۔ لہسن کے بھیتر پائی جانے والی اسی گند سے منشیہ کے شریر کو کئی پرکار کے لابھ ہوتے ہیں۔
لہسن کا سیون کرنے سے ایلیسین نامک سلفر پاچن تنتر میں پرویشت ہو کر پورے شریر میں پھیل جاتا ہے۔ یہ شریر پر سکاراتمک پربھاؤ ڈالتا ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ لہسن کے بھیتر اور بھی کئی یوگک تتو موجود ہوتے ہیں جو اس کے اوشدھیے مہتو کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس پرکار سے لہسن ایک پراکرتک اینٹی بایوٹک کے روپ میں کام کرتا ہے۔ لہسن کی وشیش بات یہ ہے کہ اس میں اینٹی وائرل، اینٹی فنگل اور اینٹی بیکٹیریل گن بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ شریر کی پرتیرکشا پرنالی کو مضبوط بناتا ہے جس کے کارن شریر سنکرامک روگوں سے سرکشت رہتا ہے۔ اس پرکار کہا جا سکتا ہے کہ وبھن پرکار کے سنکرمنوں کے اپچار کے لیے لہسن کو ایک اوشدھی کے روپ میں بھی پریوگ کیا جا سکتا ہے۔
لہسن پر کیے گئے ادھیانوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی لابھکاری ہے جن کو ہردے سمبندی روگ ہوتے ہیں۔ ورتمان سمے میں دنیا میں ہونے والی موتوں میں ہردے روگ کو پرمکھ کارک کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ موٹاپا، خراب آہار، وہار، شاریرک گتیویدھیوں کا کم ہونا، دھومرپان، اکت رکت چاپ اور اسی پرکار کی کئی چیزیں ہردے روگ کے جوکھم کو بڑھا دیتی ہیں۔ شوگر کا شکار لوگوں میں رکت شکرا کو کم کرنے، کولیسٹرول کو کم کرنے، دھمنیوں کے لچیلے پن کو بنائے رکھنے اور شریر کے بھیتر رکت کے تھکوں کو جمنے سے روکنے میں لہسن کی پربھاوی بھومیکا ہوتی ہے۔ یہ سٹروک کے خطروں کو بھی کافی سیما تک کم کرتا ہے۔
لہسن کی ایک وشیشتا یہ بھی ہے کہ اس سے کئی پرکار کی دوائیاں بنائی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جو دوا لے رہے ہیں اس میں لہسن کا پریوگ ہوا ہو اور آپ سوئم بھی الگ سے لہسن کا پریوگ کر رہے ہوں۔ ایسے میں اچت یہ ہوگا کہ اس کے استعمال کے لیے ہم کسی چکتسک سے رائے ضرور لیں۔ لہسن کے بھیتر اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو آکسیڈیٹیو شتی کے خلاف شریر کے پرتیرکشا تنتر کو مضبوط بناتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو لہسن اینٹی آکسیڈنٹ کو بڑھانے اور اچھ رکت چاپ والے لوگوں میں آکسیڈنٹیو تناؤ کو کم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔
اس کی ایک وشیشتا یہ ہے کہ الزائمر اور ڈیمنشیا جیسے سامانیہ مستشک کے روگوں کے بڑھتے جوکھم کو کم کر دیتا ہے۔ لہسن کے بھیتر پایا جانے والا اینٹی آکسیڈنٹ توچہ کی کوشکاؤں کی پرکریا میں سدھار کرتا ہے۔ یہ لمبے سمے تک منشی کی توچہ کو سوستھ اور جھریوں سے مکت بنا سکتا ہے۔ کچھ روگ ایسے ہوتے ہیں جو توچہ سے سمبندھت ہوتے ہیں جیسے ایکزیما، سوراسس یا سوجن آدی۔ اس پرکار کے سمسیاؤں کے سمادھان میں لہسن کو اپیوگی بتایا گیا ہے۔
لہسن کے بھیتر جو وٹامنس پائے جاتے ہیں وہ بالوں کے وکاس اور ان کے سواستھ کے لیے بھی لابھدائک ہوتے ہیں۔ اس کے اینٹی فنگل اور روگاڑو رودھی گن بالوں کے وکاس کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ یہ بالوں کو گرنے سے روکتے ہیں۔ یدی کوئی انسان اپنے بالوں کی رکشا کرنا چاہتا ہے तो वो उन शैंपू का प्रयोग कर सकता है जिनमें लहसुन का प्रयोग किया गया हो। कुछ अनुभवी लोगों का ये कहना है कि यदि कोई व्यक्ति लहसुन की एक कली या उसके जवे को अपने दैनिक आहार में शामिल कर लेता है तो उसको बहुत सी पाचन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है।
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लहसुन के एक जवे को अगर सुबह में खाली पेट पानी के साथ निगल लिया जाए तो उसके बहुत से लाभ शरीर को मिलते हैं। पेचिश, डायरिया और कोलाइटिस जैसी आंतों से संबंधित समस्याओं को दूर करने में लहसुन को प्रभावी बताया जाता है। लहसुन की एक विशेषता ये है कि वो आंतों के भीतर अच्छे बैक्टीरिया को प्रभावित नहीं करता, किंतु हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है। पाचन में सुधार करने के साथ ही साथ लहसुन सूजन को दूर करने में भी सहायक होता है। व्यंजनों को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए लहसुन को उनमें मात्रा के अनुसार डाला जाता है। लहसुन को ताज़ा, सूखा पाउडर, अचार और कई अन्य रूपों में प्रयोग किया जाता है। लहसुन के इन बहुमूल्य औषधीय गुणों के दृष्टिगत हमको इसका प्रयोग करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
श्रोताओं, ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अब हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।